जय श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जय जसदानंदन व्रज जनरंजन, 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 जसदानंदन व्रज जनरंजन। Thank you. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare विष्णुपाद परमहंस परिव्राज प्रचार्य अष्टतरसुते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की नीताई को प्रेम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाद्मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमालोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम कैंटो 10 अध्याय 11 श्लोक 42 संवत्सरूपिणं भिक्ष्य वत्सयूथागतं हरि दर्शयन् बलदेवाय सने मुग्धे वासादत संवत्सरूपिणं भिक्ष्य वत्सयूथागतं हरि दर्शयन् बलदेवाय सने मुग्ध इवासादत संवत्सरूपिणं व्यख्य वत्सयूथागतं हरि दर्शयन् बलदेवाय सने मुग्ध इवासादत श्लोक के शब्दार्थ ऐसे हैं, मेरे पीछे बोलेंगे आप लोग। तम असुर को वत्सरूपिणं बछड़े का वेश धारण किए भिक्ष्य देखकर वत्सयूथागतं, जब वो असुर अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुसा। हरि भगवान कृष्ण दर्शयन सूचित करते हुए बलदेवाय बलदेव को सने अत्यंत धीमे धीमे मुग्ध इब मानो कुछ समझ ही न रहे हो, आसद पास आए। ट्रांसलेशन इन कॉर्पोरेट डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुस आया है, तो उन्होंने बलदेव को इंगित किया, ये रहा दूसरा असुर। फिर वो उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए, मानो वो असुर के मनोभावों को समझ नहीं रहे थे। तात्पर्य मुग्ध इव शब्द का आशय यह है कि यद्यपि कृष्ण सब जानते हैं, किंतु यहाँ ये ऐसा बन रहे थे जैसे वो ये नहीं जानते कि असुर बछड़े के बीच में क्यों घुस आया है। अतः उन्होंने बलदेव को संकेत से बताया। ओम ज्ञान निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो निमृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखानितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की जो वनगमन लीला है, वन में जाकर भगवान अपने मित्रों के साथ किस प्रकार का लीला कर रहे थे, और ये लीला का रस को और बढ़ाते थे जब असुर का वध हो जाती थी। ऐसे खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण सारे असुरों को मार देते थे। जब असुर लोग मारा जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उनके ग्वाले मित्र थे बड़े आनंद लेते थे। जब असुर आकर के कुछ हरकतें करते थे और भगवान वो असुरों को मार देते थे तो वो बच्चों को बड़ा मजा आता था। ए मर गया, भगवान कृष्ण के द्वारा असुर मारा गया, हाथ पीट करके वो आनंद करते थे। तो आज के प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी ये बात को बता रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ लीला करते हैं संसार में आकर, तो लीला करने के पीछे कुछ हेतु रहती है। एक बद्ध जीव को आकर्षित करके अपने धाम में बुला लेना, और दूसरा है असुरों को भी मारना। जहां पर भगवान की कथा होती है, लीला कथा होती है, वो जगह तीर्थ है। और जहां पर भगवान की कथा नहीं होती है तो वो जगह को कौवा की तीर्थ स्थान माना गया है। जहां पर भगवान की कथा लीला कथा नहीं होती है तो वो जगह को को वहाँ के तीर्थ स्थान माना जाता है। तो वो जगह पे मतलब गोवा लोग जैसे कि मरा हुआ मुर्दर को लेकर अपने में काय काय हाय हाय होते हैं, मारपीट करते हैं, ठीक उसी प्रकार तो भौतिक जगत में प्रत्येक कुछ नश्वर वस्तु को पाने के लिए अपने में झगड़ते हैं। लेकिन जहां पर कौवा काय काय होते हैं वहां पर भगवान के भक्त नहीं जाते हैं, वहां पर हंस नहीं जाते, हंस मतलब भगवान के भक्त वहां पर नहीं जाते। आकाश में एक राजहंस उड़ जा रहा था तो नीचे एक तालाब में कुछ बगुले बैठे थे, तो बैठे बैठे जब देखें आकाश में ऊपर एक हंस उड़ जा रहा है तो वो बगुले बुलाए, ए इधर आओ इधर आओ। तो आकाश में जो उड़ जा रहा था बगुला न सॉरी राजहंस, तो आया बगुले के पास। बगुले ने पूछे आप कहां से आए हो, आपका आंख इतने लाल दिख रही है और आपका पैर इतने लाल दिख रही है, आपका शरीर इतने सुगठित है, आप कहां से आए हो। तो राजहंस बगुले की बातें सुनकर के बोले मैं मानस सरोवर से आया हूं। तो बगुले बोले हाँ तो वहां पर क्या मिलती है, हाँ आप इतने सुंदर दिख रहे हो, आपका शरीर इतने स्वस्थ है, हाँ तो वहां पर क्या मिलती है। तो राजहंस बोला वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो ये सुनकर के बगुले बोले क्या वहां पर मछली मिलते हैं, हाँ। तो राजहंस बोला ये सब वहां पर नहीं मिलती है। तो बगुले जैसे सुने कि वहां पर मछली नहीं मिलते हैं तो बगुले लोग क्या बोले, जहां पर मछली नहीं मिलते हैं ऐसे जगह कौन जाए। तो कभी कभी बाहर के लोग हमें पूछ लेते हैं कि आप लोग इस्कन के लोग बोलते हो कि कोई जब फिल्म आर्टिस्ट कुछ भजन गाते हैं तो सुनना नहीं चाहिए, और कोई फिल्म आर्टिस्ट जब आते हैं उनको देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप ही लोग तो आप इस्कन वाले तो ऐसे फिल्म आर्टिस्टों के द्वारा गाना गाते हो और ऐसे फिल्म आर्टिस्टों को आप इस्कन में बुलाते हो, तो वो जाकर प्रभक्तों की ये कहना है तो आप लोग आते नहीं हो, तो किसी भी प्रकार आप लोगों को भगवान के पास लाना है, तो इसीलिए हमें किसी जो लोगों के प्रति आप आकर्षित हो तो ऐसे लोगों को हमें बुलाते हैं, हाँ तो जो द्वारा आप लोग भगवान के पास आओ, नहीं तो हमारा वो लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को कैसे भगवान के पास लाना है ये हेतु से हम ऐसे लोगों को बुलाना पड़ता है। तो भगवान की जो लीला है ये अनंत है, बद्ध जीव इतने सहज भगवान की लीला कथा के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, हाँ। तो किसी भी प्रकार हमें ऐसे भगवान की कथा के प्रति आकर्षित करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। भगवान की लीला कथा अनंत है, अनंत देव अनंत समय से अनंत मुख से भगवान की लीला कथा को गाते हैं फिर भी उनका कोई अंत नहीं पाते हैं। भगवान की लीला कथा एक प्रकार का औषधि है ये भौतिक जगत से निकल जाने के लिए। श्रोणतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहृत सतां। भगवान बताते हैं कि जो मेरे लीला कथा को सुनते हैं ऐसे सुनने वालों के हृदय में मैं कथा के माध्यम से प्रवेश करके उनके हृदय से समस्त प्रकार के भौतिक वासनाओं को नष्ट कर देता हूं, उनके हृदय से समस्त प्रकार अनर्थ को समाप्त कर देता हूं। हृदय अंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहृत सतां, समस्त प्रकार भौतिक इच्छाओं को मैं नष्ट कर देता हूं। सहज में कलिजोग है, लोगों का मन इतने स्थिर नहीं है, भगवान में मन निश्चित नहीं हो पा रही है, इसीलिए प्रहलाद महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम का जो सार है, भागवत का जो धर्म है वो बताया गया है। भागवत का धर्म क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, केवल यही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह सहज रूप में जन्म मृत्यु रूपी काल चक्र को कुचल सकता है, बड़े आसानी से जन्म मृत्यु रूपी काल चक्र को पार कर सकता है। इसीलिए परीक्षित महाराज जब मरणासन में बैठे हुए थे तो अपने श्रील सुखदेव गोस्वामी को पूछे कि पीबंतम त्वत्मुख अंबुजम च्युतम हरिकथा अमृतम, मनुष्य शरीर होने के नाते तो स्वाभाविक है भूख और प्यास लगना। तो ये बात को सोचकर श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा को रोकने के लिए चाह रहे थे, लेकिन जब श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा को रोकने के लिए चाह रहे थे तो उस समय परीक्षित महाराज क्या कहे, नहीं आप रोकिए मत, आप बोलते जाइए। ऐसा एक समय था मैं प्यासा था, अब प्यास में तड़पते हुए मैं एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया और ब्राह्मण के सांप से आज मैं प्यासा नहीं हूं, आज मैं स्वस्थ हूँ, ब्राह्मण के सांप से आज मैं स्वस्थ हूँ, आप बोलते जाइए, आप बोलिए। लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ पर बताते हैं कि मति न कृष्ण परतो स्वतः मिथ्य भी उपद्यते, मति न कृष्ण परतो स्वतः मिथ्य भी उपद्यते गृह व्रतान। जो लोग भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त है और अपने इंद्रिय अनियंत्रित है, ऐसे लोग मति न कृष्ण परतो किसी भी प्रकार अपने मति को कृष्ण कथा में जोड़ नहीं पा रहे, किसी भी प्रकार भगवान की कथा में अपने मन को लगा नहीं पा रहे, इंद्रिय अनियंत्रित होने के कारण मति न कृष्ण मति नहीं लग पा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण आके यही बताए कि जीव जागो, ये अवस्था से उठो, भगवान के कथा में मति को लगाओ। मति न कृष्ण परंतु स्वतः उपद्यते गृह प्रदानम अदांत गोभी दिशतम समिश्रम पुनः पुनः चर्बित चरवण। अनादि काल से इंद्रियों को हमें सुख दे रहे हैं, इसीलिए ये इंद्रिय भी अनियंत्रित है, ऐसे अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा हमें भगवान का कथा में हमारे मन को लगा नहीं पा रहे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके बताते हैं जो जीव का जो स्वभाव है वो इतने सहज में बदलती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पहले कुछ ऐसे कचौरी खाया और कचौरी खाने के कारण उनका पेट में थोड़ा गड़बड़ी हो गई और उनको इलाज लेना पड़ा, सुई लेना पड़ा, कितने तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन फिर आगे जाकर के ऐसे एक समय होती है जब वो कचौरी के सामने आता है तो फिर भूल जाता है पिछले समय में जो ये कचौरी खा के इतने कष्ट मुझे झेलना पड़ा था, ये बात को जैसे कचौरी सामने आ जाता है वो भूल जाता है, फिर वो कचौरी खा लेता है। ये जीव का स्वभाव है, आदत है, तो ये स्वभाव को बदलने के लिए भगवान स्वयं आकर के क्या बोले कि जीव जागो, कतो काल जाओ तुम्हें माया पिशाची कोले, कब तक आप माया पिशाची के गोद में सोते रहोगे, उठो। और खुद ही तो आके जीव को बता, जागना मतलब भक्ति में लग जाओ, खुद ही तो आके ऐसे बताते हैं, फिर उसके साथ साथ भी अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, जाओ जाओ नित्यानंद, जाओ हरिदास, सबत्र आमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाए जाओ करो ही भिक्षा, भले कृष्ण भले कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रत्येक को भक्ति करने के लिए आप लोग जाके बताओ। प्रत्येक भक्तों को एक प्रत्येक भक्तों का एक उत्तरदायित्व है, चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि प्रत्येक भक्तों का एक उत्तरदायित्व है, प्रत्येक के पास जाकर श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की। तो प्रत्येक प्रत्येक के पास जाकर उनको ये हरे कृष्ण मंत्र बता, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है प्रत्येक भक्तों को। एक बार प्रभुपाद जी कुछ भक्तों के साथ बैठे थे और कोई एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक किताब उठा ली अपने हाथ में और उठा करके देखे जो बुक के जो फ्रंट पेज है तो उसमें पंचतत्व का पिक्चर है, छवि है, और उसमें चैतन्य महाप्रभु का बाल खुला हुआ, लंबे लंबे बाल है। तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का ये लंबे लंबे बाल है? तो ये बातें सुनकर के चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी बोले वो भक्त को कि चैतन्य महाप्रभु हिप्पी थे। प्रभुपाद जी बोले कि चैतन्य महाप्रभु हिप्पी थे, ही हैज कम टू सेव यू, वो आए आप लोगों को बचाने के लिए। तो ये जैसे प्रभुपाद जी बोले कि रूपा जी हिप्पी थे और आप लोगों को बचाने के लिए आए हैं, तो ये बात सुनकर के सारे भक्तों ने हंस पड़े। सारे भक्त ने हंसे, प्रभुपाद जी से मजाक कर रहे थे तो सारे भक्त ने हंसे। तो प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी बांग्ला के थे, बांग्लादेश के। तो प्रभुपाद जी जब बोले कि ही हैज कम टू सेव यू, तो सारे भक्तों ने ये बात को लेकर के मन मन में हंसने लगे कि प्रभुपाद जी आए हमें सब हजामत करने के लिए। सेव इंग्लिश में सेव, सेव का सेव एस एच ए बी ई, उसका मीनिंग अर्थ है कि हजामत करना, मुंडन करना। और सेव एस ए बी ई, उसका अर्थ है कि रक्षा करना। लेकिन प्रभुपाद जी जो बोले ही टू कम टू सेव यू, तो सारे भक्तों ने ये सोचकर हंसे कि प्रभुपाद जी आए थे हमको हजामत करने के लिए। ये बात को लेकर के सारे भक्तों ने हंसे। तो जब भक्त लोग हंस रहे थे तो प्रभुपाद जी भक्तों के हंसने का मतलब को समझ गए। तो प्रभुपाद जी भी धीरे से हंस करके बोले, हाँ सही बात है प्रभुपाद जी, आप लोग को सेव करने के लिए और सेव भी करने के लिए आए थे। आप लोग को रक्षा करने के लिए आए थे और उसके साथ साथ आप लोगों को मुंडन करने के लिए भी आए थे। तो कहना ये है कि भगवान और भगवान के भक्त ये संसार में जब कुछ आकर के ऐसे लीला करते हैं, ये लीला के द्वारा एक बद्ध जीव को आकर्षण देते हैं, जो कृष्ण के प्रति वो आकर्षित हो जाए। भगवान का लीला बड़े रहस्यमय होती है। भगवान का लीला को ब्रह्मा इंद्र जैसे बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा लीला में कर रहे थे कि उसी समय गर्ग मुनि के द्वारा एक असुर को प्रकट कराया गया था, और ये असुर जदुवंश को भीतग्रस्त करा रहा था, कृष्ण के वंशजों को परिवार के लोगों को डरा रहा था। एक बार जदुवंश के द्वारा गर्ग मुनि अपमानित हुए थे, और ये अपमान का बदला लेने के लिए गर्ग मुनि वहां पर प्रमित किए थे कि मैं ऐसे एक जीव सृष्टि करूंगा जो जीव के द्वारा सारा जदुवंश डरे। इसीलिए तो वो एक असुर को सृष्टि किए थे। तो ये असुर आकर के सारे जादवों को डरा रहा था। जब आया मथुरा में आया तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आकर के बिना युद्ध भागने लगे, और ये असुर बहुत गाली गुलज करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे पीछा करने लगा। और भगवान कृष्ण आगे आगे भाग रहे थे और ये असुर उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। और कृष्ण उनको ले के ऐसे एक जगह में पहुंचे जहां पर उनके एक भक्त पहले से तपस्या कर रहा था उनका दर्शन करने के लिए। और ये भक्त कई जन्मों से भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए तप कर रहे थे। वो कौन थे? मुचकुंद महाराज। मुचकुंद महाराज ये धरती के एक राजा थे, ये संसार के एक राजा थे, लेकिन वो इतने धर्मनिष्ठ थे, धर्मपरायण थे, उनके धार्मिक कार्यकृत्य वो स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके धार्मिक मनोवृत्ति के कारण स्वर्ग के देवता लोग भी उन्हें आदर देते थे, सम्मान करते थे। और खाली धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, धार्मिक राजा नहीं थे, वो बड़े शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। जब असुरों लोग स्वर्ग के देवताओं को सताते थे, तो स्वर्ग के देवता लोग भी वो मुचकुंद राजा को उनके सहायता के लिए बुलाते थे, और वो जाते भी थे। वो समय ऐसे ऐसे धर्म संपन्न व्यक्ति होते थे तो अपने धार्मिक बल के द्वारा स्वर्ग तक जाते थे। भगवान का भक्ति करने से कोई व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वर्तमान की जो तथाकथित भौतिकवादी है, तो अपने भौतिक विद्या के द्वारा वो स्वर्ग अन्य ग्रहों में जाने के लिए इच्छा रखते हैं, लेकिन और वो ग्रह में तो जा नहीं पाते हैं। कोई रेगिस्तान में उतर जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें मंगल में पहुंच गए, कि प्लूटो में पहुंच गए, कि बुध में पहुंच गए, ऐसे एक झूठी एक प्रस्ताव रखते हैं तथाकथित भौतिक लोगों के सामने। और तथाकथित भौतिक लोग भी ऐसे ही ऐसे लोगों के कथा में बह जाते हैं। वास्तविक ऐसे ऊंचे लोग जाना है तो ऊंचे कृत्य धार्मिक पुण्य कर्म भी होना चाहिए। कोई भौतिक विद्या के आधार पर वो ऐसे ऊंचे जगह पे नहीं जा सकता। तो ये मुचकुंद महाराज ऐसे एक व्यक्ति थे, तो अपने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस स्वर्ग तक जाते थे। अर्जुन भी जाते थे, ऐसे ऐसे बहुत पहले समय में ऐसे भक्तिमान पुरुष होते थे। अपने भक्ति के द्वारा, भक्ति के बल के ऊपर वो ऐसे ऐसे ऊंचे लोग जाते, भक्ति के द्वारा कहीं पे भी जा सकते हो। भक्ति के द्वारा कहीं पे भी एक व्यक्ति जा सकता है, नरक भी जा सकता है। हाँ, वहां पर कुछ कल्याण कार्य करने के लिए, नरक में वो आडा करने के लिए नहीं जाते हैं, नरक वासी उद्धार करने के लिए, कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जहाँ पर वहां पर बड़े पीड़ित है, ऐसे पीड़ित लोगों को वहां से निकालने के लिए वो जाते हैं। तो भक्ति के द्वारा ये मुचकुंद महाराज स्वर्ग तक पहुंच जाते थे। और एक बार असुर लोग वहां पर आक्रमण किए थे, तो मुचकुंद महाराज वहां पर गए और अपने शक्ति के द्वारा सारे असुरों को परास्त किए। और जब वो युद्ध कर रहे थे असुरों के साथ, उनके युद्ध अद्भुत कला को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। और जो देवताओं के जो सेनापति थे कार्तिकेय, वो मुचकुंद राजा का युद्ध कला को देख करके बड़े खुश हो गए। और आखिर में उन्होंने, जब असुर लोग परास्त हो गए उनके युद्ध के द्वारा, तो उन्होंने कहे, हम लोग, आप लोग, आपके ऊपर बड़े प्रसन्न है, तो आप मन चाहो वर मांग सकते हो। तो भक्त थे, कोई वर चाहते नहीं थे, लेकिन देवताओं ने बार बार जब कहे, तो उन्होंने कहे, मैं क्लांत हूँ, मैं थक चुका हूँ, लंबा समय तक युद्ध करते करते मैं थक चुका हूँ, यदि आप मुझे कुछ वर के रूप में देना चाहते हो, ऐसे दो कि मैं लंबा समय तक सो जाऊं। हाँ, तो देवताओं में बड़े योगी लोग, देवताओं में बड़े वे योग में निपुण होते हैं। हाँ, अपनी योग शक्ति के द्वारा वो छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, मक्खी बन जाते हैं, बहुत बड़े, ऐसा उनके भीतर योग शक्ति है। तो देवताओं के जो सेनापति थे, तो बोले, ठीक है, तो आप यदि ऐसा चाहते हो तो तथास्तु। तो ये वर लेकर मुचकुंद महाराज बहुत दूर एक जगह चले गए, जहां पर कोई नहीं पहुंच सके। तो ऐसे जगह में जाकर एक गुम्फे में, पहाड़ के गुम्फे में, बहुत लंबे समय तक सोने के लिए आप वहां पर जाकर सो गए। जब ये असुर भगवान श्री कृष्ण के साथ पीछे पीछे भाग रहा था, अनेक योग तपस्या करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण कोई पकड़ नहीं सकता। असर तो ये असुर था, वो कैसे पकड़ेगा? कि भगवान कृष्ण को पकड़ना है तो एकमात्र आधार है भक्ति। भक्ति के द्वारा उनको कोई पकड़ सकता है। तो ये असुर अपने असुरिक मनोभाव के द्वारा, यदि वो भगवान श्री कृष्ण सामने देख रहा था, लेकिन उनके पास पहुंच ही नहीं पाया, पकड़ना तो दूर उनके पास पहुंच ही नहीं पाता था। तो भगवान कृष्ण अपने शक्ति के द्वारा उनको खींच ले जा रहे थे काल के ओर। हाँ, और ये काल के द्वारा वो भी बह जा रहा था असुर, और लेते लेते ऐसे जगह उन्हें पहुंचे जहां पर उनके भक्त उनके दर्शन के लिए अपेक्षा किए थे। तो वहां ले गए, और वहां पर जाकर भगवान श्री कृष्ण वो गुम्फा के भीतर प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो वो जो असुर था गुम्फे के सामने खड़े होकर बहुत गाली गलौज किया। आप ऐसे बहुत सुना था, बहुत बड़े वीर हो, लेकिन एक तुम एक कापुरुष हो, मुझे देखकर भाग जा रहे हो, मुझसे लड़ाई करो, ऐसे के कुछ सब बातें कह के वो भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे गुम्फा के भीतर घुस गया। जब घुस गया तो देखा गुम्फा के भीतर कोई एक सोया हुआ है। तो असुर था, असुर का बुद्धि विपरीत चलती है, उल्टा चलती है, तो समझ नहीं पाया। तो सोचा ये मुझे छुप के डर के तू सो गया है, तो लगा जोर से लात, गुम्फे के अंदर लगा, अंदर जाकर के तो सोया हुआ व्यक्ति के ऊपर लगाया एक लात। तो लात लगाया, वो सोया हुआ व्यक्ति को आशीर्वाद था देवताओं का कि मैं लंबे समय तक सोऊंगा, लेकिन मेरे सोने में जो असमय में मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो मैं जब निद्रा से उठ जाऊंगा, जागृत हो जाऊंगा, मेरे उठाने वाला व्यक्ति मेरे आंखों से अग्नि के द्वारा जलकर भस्म हो जाएगा। असमय में से यदि कोई मुझे जगाए, तो वो असुर जो था गुम्फा के भीतर गया, और असमय में वो मुचकुंद राजा को जगाने के कारण, तो मुचकुंद राजा उठे और उठ करके देखे तो सामने वो का असुर था। तुरंत उनके आंखों से अग्नि प्रकट हुई निकली, और ये अग्नि के द्वारा वो असुर जल करके भस्म हो गया। जब भस्म हो गया, तब भस्म हो जाने के बाद तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। तो ये लीला के कहने की उद्देश्य ये है, भगवान हर समय संसार में प्रकट होते हैं, असुरों को मारने के नहीं, असुरों को मारने के लिए नहीं आते, अपने भक्तों के साथ, अपने शुद्ध भक्तों के साथ ऐसे कुछ आनंद, लीला रूपी आनंद करने के लिए। ऐसे तो गोलोक वृंदावन में अपने भक्तों के साथ नित्य लीला करते ही है, लेकिन फिर भी ये भक्ति संसार में ऐसे कुछ शुद्ध भक्त रह जाते हैं तो ये शुद्ध भक्तों के साथ हाँ गोलोक वृंदावन छोड़कर प्रकट होते हैं ये संसार में हाँ ऐसे कुछ लीला करने के लिए। तो कहने की ये अर्थ है भगवान हर समय संसार में लीला करने के लिए आते हैं और ये लीला कोई व्यक्ति समझ पाता है हाँ जिनके भीतर शुद्धता है। हाँ तो सूर्य उदय होती है और अस्त भी जाता है, लेकिन सूर्य का उदय और अस्त होने के साथ साथ भी हाँ लोगों का भौतिक संसार हर व्यक्ति का आयु को हर लिया जाता है। सूर्य का उदय और अस्त हर व्यक्ति का आयु को हाँ उदय अस्त के द्वारा हर व्यक्ति का आयु हर लिया जाता है, लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला में मग्न है तो सूर्य का उदय और अस्त रूपी काल चक्र हाँ उनका आयु को स्पर्श नहीं कर पाता। स्कंद पुराण में जमराज अपने दूतों को कहते हैं जो व्यक्ति भौतिक संसार में मेरे कथा को भगवान का कथा को गाते हैं और सुनते हैं वो लोगों का 10,000 पीढ़ियों के पास कभी नहीं जाना। जमराज अपने दूतों को कहते हैं जो लोग भगवान की कथा को सुनते हैं और कहते हैं ऐसे लोगों के 10,000 पीढ़ियों के लोगों के पास नहीं जाना और ये लोग वैकुंठ को प्राप्त किए हैं ऐसा समझ जाना। और जो लोग भगवान का कथा कह करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी वो लोगों को त्यागते नहीं है। यमराज ये बातें कहते हैं जो लोग भगवान का कथा कह के बड़े खुश होते हैं तो वो लोगों को लक्ष्मी कभी त्यागते नहीं है और उनके हाथ में वैकुंठ है, ऐसे लोग अपने हाथ में वैकुंठ को लेकर के चलते हैं। ये बात स्कंद पुराण में यमराज बताते हैं। भगवान की लीला असामान्य होती है। भगवान जब ये संसार में प्रकट होते हैं राम के रूप में प्रकट हुए तो एक समुद्र के ऊपर सेतु बांधे, बड़े असामान्य कार्य किए। और भगवान कृष्ण जब द्वारका में द्वापर में प्रकट हुए थे तो 7 की अवस्था में गोवर्धन को उठा करके बड़े ही अद्भुत कार्य किए। लेकिन जो लोग दिव्य पद को प्राप्त नहीं होते तो वो लोग ऐसे मिथ्या और काल्पनिक समझते हैं, लेकिन जो लोग भक्त हैं तो ऐसे भगवान का कथा से आनंद लेकर नाचते हैं गाते हैं आनंद प्रकट करते हैं। जैसे गंगा के किनारे एक आम की पेड़ भी है और एक नीम का पेड़ भी है, दोनों गंगा का जल पीते हैं, लेकिन आम का पेड़ एक मीठा फल देता है और नीम का पेड़ एक कड़वा। दोनों तो गंगा का पवित्र जल को पिए लेकिन आम का जल मीठा फल दिया और नीम का पेड़ एक कड़वा। इसमें गंगा का कोई दोष नहीं है, गंगा का दान कार्यों में कोई कृपणता नहीं है, लेकिन आधार का योग्यता के अनुसार आधार जैसे है आधार की योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति अपने फल प्रदान करता है। आधार की योग्यता के अनुसार फल प्रस्तुत होती है। जिस प्रकार आज के दिन में प्रेम कल्पतरु माधवपुरी पास के पास दोनों व्यक्ति के रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दोनों गए, लेकिन एक भक्ति का सिद्धांत को नष्ट किए और एक भक्ति के अनुयायी बने। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये संसार में प्रकट होकर के अपने लीला कथा को तो बद्ध जीवों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन बद्ध जीवों का योग्यता होना चाहिए। जब भगवान वृंदावन में गोपाल के रूप में माधवेंद्रपुरी पाद को आदेश दिए कि जाओ जगन्नाथपुरी जाओ, मेरा शरीर में ताप बढ़ गई है, मैं बहुत गर्मी में हमारा शरीर में बड़े ज्वाला हो रही है, असह्य ज्वाला हो रही है, आप जाओ जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मलय चंदन ला करके मेरे शरीर में लेप दो। वो समय माधवेंद्रपुरी पाद जी बहुत उम्र में पहुंच गए थे, बहुत बड़े बार्धक्य उनको बहुत आगे बार्धक्य में बहुत आगे हो गए थे। तो उसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण उनको कह रहे थे कि आप जाओ जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मलय चंदन ला करके मुझे मेरा शरीर में लेप दो। जब माधवेंद्रपुरी कह रहे थे कि मैं इतना मेरा द्वारा कि ये कार्य आपका ये सेवा हो सकती है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं आपके हाथ से ये सेवा लेने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, तो जाओ। तो उसी समय से माधवेंद्रपुरी पाद जी के समय से ये आज जो हमें चंद्रन यात्रा उत्सव मना है ये चंद्रन यात्रा उत्सव मनाया गया। एक शुद्ध भक्तों के हाथ से भगवान ये लीला करा करके हाँ योग योग के लिए उस सब को हाँ सारा संत संसार में किए प्रकट किए। तो मालूम कि वो समय भले रास्ता की हालत इतने वर्तमान की अवस्था में नहीं थी, वो समय कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी कि आसानी से कोई घंटों में हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके। लेकिन उसी अवस्था में माधवेंद्रपुरी पास वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए, गोपाल जी के आदेश लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे और वहां हर बीच में वो खिचोर में रुके थे ना, और खिचोर गोपीनाथ वहां पे पहुंचे थे ना, रुके थे। तो फिर जगन्नाथपुरी गए और वहां से मले चंदन लाकर जब फिर वही जगह में आके पहुंचे माधवेंद्रपुरी पास, तो वहां पर माधवेंद्रपुरी पाद का इस सेवा भाव को देखकर गोपीनाथ जी माधवेंद्रपुरी पाद को आदेश दिए कि पुरी आप यहीं पर चंदन को घिस के गोपीनाथ विग्रह में लेप दे दो तो वृंदावन में मुझे प्राप्त हो जाएगा, वृंदावन में जो गोपाल विग्रह है मुझे प्राप्त हो जाएगा, आप यहीं पर मुझे ये कार्य सेवा करो। तो जब गोपीनाथ जी ये इस प्रकार आदेश दिए माधवेंद्रपुरी पाद को, तो माधवेंद्रपुरी पाद सुबह उठ के सारे भक्तों को ये बात बता दी और सारे भक्तों ने हाँ लग गए ये चंदन यात्रा उत्सव हाँ को संपन्न करने के लिए, और चंदन जोर से घिसे और गोपीनाथ विग्रह में हाँ सारे चंदन को लगा लिए। तो उसी प्रकार आज के ये उत्सव में जो व्यक्ति चंदन के अभिषेक भगवान का ये चंदन अभिषेक विग्रह को दर्शन रूप को दर्शन करेगा तो वो माधवेंद्रपुरी पाद का प्रेम प्राप्त करेगा। खाली ये बात नहीं, हमें जो दर्शन करेगा वो तो प्राप्त करेगा, और जो लोग अंदर जाके भगवान का शरीर में चंदन लगाए वो लोग का भाग्य तो और ऊंचे है। और ये बात भी कहा जाता है जो ये 21 दिन का माधवेंद्रपुरी पाद जी का ये चंदन यात्रा चंदन उत्सव उत्सव में भाग लेगा, मतलब चंदन उत्सव में जो भी कोई चंदन भगवान को अर्पण करेगा तो वो व्यक्ति भी किसी भी प्रकार ये चंदन उत्सव महामहोत्सव में अपने को यदि वो लगाएगा तो माधवेंद्रपुरी पाद जी कृपा को प्राप्त करके वो भगवान का चरण कमल को प्राप्त करेगा। तो ये चंदन यात्रा उत्सव का महान भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, भगवान जिस प्रकार का आकर के ये संसार में ऐसे कुछ लीला छोड़ जाते हैं ठीक उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त भी ये संसार में आकर के ऐसे कुछ लीला करते हैं, जो लीला एक बद्ध जीवों के लिए एक नौका के रूप में काम करता है। ये लीला को आज के दिन में यदि हमें स्मरण करें और माधवेंद्रपुरी पाद जी के चरण कमल में हमें प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से माधवेंद्रपुरी पाद जी के कृपा प्राप्त हो पाएगा। लेकिन यदि ईश्वर रामचंद्रपुरी की जैसे भाव हृदय लेकर के तो उनके पास जाए तो फिर ये कृपा से हमें वंचित होना पड़ेगा। तो ये आज ये माधवेंद्रपुरी पाद जी के चंद्र यात्रा उत्सव है। तो और एक है आज अक्षय तृतीया, आज के दिन में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा जी के लिए रथ निर्माण कार्य शुरू होती है। अक्षय मतलब आज के दिन में जो भी कार्य होती है वो क्षय नहीं होती है, जो भी जप करते हैं तप करते हैं दान करते हैं ध्यान करते हैं, इसीलिए आज भक्तों को ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए तपस्या करना तप करना चाहिए दान करना चाहिए कि आज जो भी कार्य होती है वो अक्षय बन जाती है। तो ये आज के दिन में विशेष माधवेंद्रपुरी पाद जी जैसे महान भक्ति की बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए आज अक्षय तृतीया में आज अक्षय ये उत्सव में भगवान जगन्नाथ जी के लिए रथ निर्माण कार्य शुरू होती है। और आज के दिन में भी गांव में किसान लोग अपने घर से कुछ धान लेके जाते हैं खेती में, तो वो लोग ऐसे हैं कि शुभ मुहूर्त में कुछ ऐसे शुभ कार्य करें तो ये खेती से जो भी अक्षय धन प्राप्त होगा हमें तो अक्षय धन के द्वारा हमारा घर कभी ये अक्षय धन के द्वारा हमारा घर से कभी ये धन कभी क्षय नहीं होगा, ऐसे धन जब हमारे घर में आएगा वो धन कभी क्षय नहीं होगा। तो उसी प्रकार आज के दिन में इस प्रकार का विशेष होता है। तो माधवेंद्रपुरी पाद और अक्षय तृतीया ये सब बातें को स्मरण करके यदि हमें गंभीर रूप में भक्ति कार्य में लगेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कि भगवान की लीला से हमें आनंद ले सकते हैं। तो ये आज के दिन में कुछ भगवान के प्रसंग है, लीला है। तो आज भी श्री सुखदेव गोस्वामी यही बता देना चाहते हैं। तो भगवान के लीला से हमें इस भाव में यदि हमें रस लें तो हमें वो लीला को धारण करने में योग्य बन सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रश्न बोलिए। हाँ प्रभु जी। हाँ लेकिन ये कर सकते हैं। हाँ लेकिन शास्त्र के द्वारा बताया गया है कि भगवान को ये भगवान और भगवान के भक्त है कि मौका देते हैं हमारे जैसे लोगों बद्ध जीवों के लिए कि जितना हमें भगवान का सेवा में लगे रहेंगे उतने हमारा प्योरिफिकेशन शुद्धिकरण होगा। इसीलिए चंदन यात्रा उत्सव माधवेंद्र पुरी पाद जी के द्वारा ये हुआ शुरू हुआ। तो विशेष करके माधवेंद्रपुरी पाद जी के कृपा भाजन बनने के लिए ये उत्सव को उनके द्वारा 21 दिन का निर्णय किया गया। जब एक शुद्ध भक्तों के द्वारा एक फिक्स एक निर्धारित समय दिया जाता है तो उनके अनुगमन जब हम करते हैं तो बड़े आसानी से तो कृपा का में योग्य बन पाते हैं। ये शास्त्र के द्वारा और शुद्ध भक्तों के द्वारा एक निर्धारित किया गया 21 दिन का कि इतने दिन का इतने दिन का। ऐसे तो हम रोज कर सकते हैं, भगवान तो रोज चरण में चंदन तुलसी अर्पित होती है। लेकिन ये विशेष है, स्पेशल है, कोई व्यक्ति लूट सकता है, ले सकता है, भगवान के प्रेम कृपा ले सकता है क्योंकि इसमें उनके भक्तों की विशेष मर्सी कृपा है, हाथ है। ये कृपा लेने के लिए माधवेंद्रपुरी पाद जी का विशेष हाथ है। तो हम जितने इसमें उनके कहने के अनुसार हमें जोड़े रहेंगे उतने हमें कृपा प्राप्त कर सकते। हरे कृष्ण। हाँ तो रामचंद्रपुरी हमेशा भक्तों के प्रति दोष देखते थे कि कभी कभी भक्त होते हैं तो छोटे छोटे बातें के ऊपर भक्तों के प्रति दोष देखते हैं। ऐसे जो अच्छे भक्त होते हैं वो दोस्त तो देखते ही नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ भक्त होते हैं तो भक्तों के दोस्त देखते हैं। तो रामचंद्र पुरी के पाद जी का एक स्वभाव था, भक्तों के भीतर छोटे छोटे बातों में दोस्त देखते थे। फिर यही दोस्त बढ़ते बढ़ते आगे जा करके तो गुरु के भीतर देखने लगे, अपने गुरु माधवेंद्रपुरी पाद जी के भीतर देखने लगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वही दोस्त उनको चैतन्य महाप्रभु के भीतर भी दिखाई पड़ा। तो भक्तों के भीतर दोष देखना ये हमारा पतन की शुरुआत है। यही आगे बढ़ा, ये दोष देखना प्रवृत्ति ये आगे बढ़ा, अपने गुरु के भीतर देखे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो भगवान के भीतर भी दोष देखे। भले वो शुद्ध भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त के सिद्धांतों को यदि हमें सही सही रूप में पालन नहीं करते हैं तो फिर रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बताएं कि रूपवर्ति आचार्य का जो सिद्धांत बताएं उस सिद्धांतों को यदि हमें सही रूप में पालन नहीं करते हैं तो हम भक्ति मार्ग में हमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वही ईश्वरपुरी वो भी एक शिष्य थे राम माधवेंद्रपुरी पाद जी के, लेकिन बड़े विनय थे, अनुगत थे, उनके गुरु जो कहते थे तो उनको पालन करते थे। लेकिन रामचंद्रपुरी ऐसे एक शिष्य थे तो अपने कुछ दिखाते थे। जब राम माधवेंद्रपुरी पाद जी आखिर समय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रस में डूबे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण के विरह में तड़प रहे थे तो रामचंद्रपुरी वहां पर आकर के पहुंच कर क्या बोला है, क्या है भक्त तो ब्रह्म में आनंद करना चाहिए, किसी बात को लेकर के वो हर्षित नहीं होना चाहिए कि आनंदित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का गुरु के सामने जो गुरुगिरी की है तो उनका पतन हो गया। भले शिष्य कितने भी एडवांस हो कितने भी योग्य हो लेकिन शक्ति किसका है, गुरु का। तो गुरु के सामने जाकर जब गुरुगिरी करता है तो गुरु और वैष्णव उनका योग्यता को छीन लेते हैं, वो कृपा शक्ति को वो अपहरण कर लेते हैं। हाँ, तो जब गुरु और वैष्णव हाँ तो वो कृपा शक्ति को अपहरण कर लेते हैं, तो फिर उनके भीतर हाँ दोष प्रवृत्ति आ जाती है। बद्ध जीव के भीतर दोष देखना स्वाभाविक है, एक बद्ध जीव बद्ध स्थिति को फिर वो लौट आता है। तो यही हुआ रामचंद्रपुरी के अवस्था, यही हुआ। तो हमेशा वो भक्तों के भीतर दोष देखते थे, हाँ, तो यही दोष उनका पतन के कारण हुआ। अरे हाँ, भक्त कैसे भी हो एक बार भगवान के आश्रय लेने के हाँ वो त्याग नहीं सकते। और रामचंद्रपुरी का संपर्क किसके साथ था? माधवेन्द्रपुरी पाद जी के साथ। भले हमारी फिर कोई शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के कारण से तो भगवान हमें त्याग नहीं सकते। भले हमारी फिर कोई दोष आ जाए, भक्ति करते करते कभी भी दोष भी आ जाए, लेकिन एक शुद्ध भक्त के साथ संपर्क होने के कारण भगवान उनको अवहेला नहीं कर सकते। हाँ, पनिशमेंट दंड दे सकते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए, उनको शुद्ध बनाने के लिए कुछ समय के लिए उनको दंड दे सकते हैं, लेकिन त्यागते नहीं है। हाँ, यही है। तो किसी जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य के जो जामाई थे हाँ अमोघ, तो हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु के भीतर दोष देखते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं त्यागे। भले सार्वभौम भट्टाचार्य त्यागे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ संपर्क होने के कारण भगवान अमोघ को नहीं त्यागे। ठीक उसी प्रकार भले रामचंद्रपुरी के भीतर दोष थी, लेकिन माधवेन्द्रपुरी के साथ संपर्क होने के नाते तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं त्याग पाए। ये भक्ति का एक लंबा सूक्ष्म कनेक्शन है। ये कनेक्शन को कनेक्शन के साथ एक बार जोड़ जाने के बाद वो किसी भी हालत में कटा नहीं जा सकता। ये कनेक्शन कट नहीं सकता, तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं चाहते। भले दोष प्रभु देखें, लेकिन कट नहीं पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।